नमस्कार भारत, मंगलवार 21 जुलाई, मैं हूं निखिल रंजन। 54 साल बाद अमेरिका की धरती पर लहराया क्यूबा का झंडा, दोस्ती का सफर शुरू, लेकिन अभी लंबा रास्ता बाकी।
Of course, this milestone does not signify an end to differences that still separate our governments.
भारत की संसद का मानसून सत्र आज से, सत्ता और विपक्ष दोनों ने कस ली है कमर। बिहार की राजनीति से कहां गुम हो गए वामपंथी दल।
बिहार में वैसे हम लोगों की एक संघर्षशील उपस्थिति है, लेकिन संसदीय हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से हम लोग काफी कमजोर स्थिति में है।
रटौल आम के बागों की सैर, अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी खेल की भी, लेकिन सबसे पहले प्रमुख समाचार।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अमरीका और क्यूबा के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल होने को एक ऐतिहासिक लम्हा बताया, लेकिन साथ ही कहा कि दोनों देशों के बीच अब भी कई मतभेद हैं। वॉशिंगटन में क्यूबा दूतावास खुलने के बाद मीडिया से बात करते हुए कैरी ने कहा कि संबंध सुधरने में अब भी लंबा रास्ता तय करना है। 54 साल के बाद अमरीका में क्यूबा का दूतावास खुला है। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को लेकर अमरीका और इसराइल खुलकर आमने सामने आ गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस समझौते को अपनी मंजूरी देकर एक बेहतरीन कदम उठाया है और इससे साबित होता है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने का यही एकमात्र रास्ता था। इस परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करना होगा, लेकिन उसके बदले उस पर लगाए गए तमाम आर्थिक प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने सुरक्षा परिषद के इस कदम को गलत बताया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद उसी ईरान के साथ हुए समझौते को मंजूरी दे रहा है जो पहले सुरक्षा परिषद के कई फैसलों की अवहेलना कर चुका है। वो ईरान जो इसराइल की बर्बादी की बातें करता रहा, उसके साथ समझौता किया गया है। ये बड़े दोगलेपन वाली बात है। वो कह रहे हैं कि इस समझौते से युद्ध को टाला जा सकता है, ये बिल्कुल गलत बात है। सच्चाई तो ये है कि इससे युद्ध की आशंका और बढ़ गई है। ईरान के साथ परमाणु समझौते पर गुस्से का इजहार करते ये थे इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। मध्य प्रदेश और झारखंड में पिछले दो दिनों से लगातार बारिश की वजह से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के बाढ़ में फंसे होने की आशंका है। बारिश की वजह से रेल और सड़कों पर आवाजाही भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सटे सीहोर जिले में 10 लोग बारिश के पानी में बह गए। वहीं झारखंड में भी पिछले 72 घंटों से जारी बारिश से अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राज़ील में शुक्रवार रात से सोमवार के बीच एक ही शहर में 35 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। मनाउस शहर के अधिकारियों का कहना है कि हत्या की घटनाओं में अचानक आई तेज़ी की वो जांच कर रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मारे गए ज़्यादातर लोगों की पहचान नशीली दवाओं के कारोबारियों के रूप में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इस बात की पुष्टि की है कि ग्रीस ने 2.05 अरब यूरो का अपना पुराना बकाया चुका दिया है। इसके अलावा यूरोपीय सेंट्रल बैंक को सोमवार को 4.02 अरब यूरो का भुगतान भी कर दिया गया। ये भुगतान यूरोपियन यूनियन से मिले 7 बिलियन यूरो के कम समय के कर्ज मिलने के बाद किए गए हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल रंजन। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ इंटरनेट और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। बीस जुलाई की तारीख क्यूबा के इतिहास में दर्ज हो गई है, क्योंकि 54 सालों के बाद अमेरिका की धरती पर क्यूबा का झंडा लहराया है। आधी सदी से भी ज़्यादा वक्त के बाद अमेरिका और क्यूबा के बीच कूटनीतिक संबंधों का आगाज़ हुआ। अमेरिका में 54 साल बाद क्यूबा का दूतावास खुलने पर राजधानी वॉशिंगटन में एक औपचारिक समारोह का आयोजन किया गया। दोनों ही देशों ने इसे ऐतिहासिक लम्हा बताया, लेकिन कहा कि संबंध सुधारने के लिए और प्रयास किए जाने ज़रूरी हैं। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए प्रभात पांडे से।
क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगुएज़ की मौजूदगी में जब वॉशिंगटन में क्यूबा दूतावास की इमारत पर देश का झंडा फहराया गया, तो फिदेल कास्त्रो के समर्थकों ने फिदेल फिदेल के नारे लगाए। दिसंबर में अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और क्यूबा के राष्ट्रपति राउल कास्ट्रो की ऐतिहासिक घोषणा के बाद सोमवार को दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध फिर से कायम हो गए। ऐसा होने में लगा 54 साल का लंबा वक्त। समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कहा कि बीते समय में जीना बेकार है और अब आगे की तरफ देखने का वक्त आ गया है। लेकिन साथ ही कैरी ये कहना भी नहीं भूले कि दोनों देशों के बीच संबंध शानदार करने के लिए अभी लंबा रास्ता तय करना होगा।
Of course, this milestone does not signify an end to differences that still separate our governments.
इस ऐतिहासिक मौके से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि दोनों देशों के बीच मतभेद पूरी तरह से खत्म हो गए हैं, लेकिन इससे कम से कम ये तो साबित हो गया कि शीत युद्ध खत्म हो चुका है और दोनों ही देशों का हित इस बात में है कि हम एक दूसरे से बात करें, न कि किनारा करके बैठे रहें। संबंध सामान्य होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है जो लंबा वक्त तो लेगी, लेकिन अमरीका और क्यूबा के लोगों के हित में है। ये थे अमरीका के विदेश मंत्री जॉन कैरी के शब्द। वहीं क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगुएज ने भी इसे एक सकारात्मक शुरुआत बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को क्यूबा के प्रति अपनी नीति में बड़े बदलाव लाने होंगे।
Cito la historia para afirmar que hoy se abre la oportunidad de empezar a trabajar para fundar unas relaciones bilaterales.
आज हमें मौका मिला है कि एक दूसरे को बदले हुए नजरिए से देखना शुरू करें। क्यूबा की सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन साथ ही क्यूबा से हर तरह के आर्थिक और वित्तीय प्रतिबंध हटाने होंगे। साथ ही ग्वांतानामो क्षेत्र हमें सौंपना होगा, तभी हमारे कष्ट खत्म होंगे और इस नई शुरुआत का फायदा होगा। ये थे क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगुएज के शब्द। अब अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी अगले महीने क्यूबा में ऐसे ही एक समारोह में हिस्सा लेंगे। फिदेल कास्ट्रो की अगुवाई में हुई क्रांति के 2 साल बाद 1961 में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध टूट गए थे। उसके बाद से अमेरिका ने क्यूबा से किसी भी तरह के लेन देन पर प्रतिबंध लगा दिया था। अमेरिका और क्यूबा के बीच संबंध बहाल होने से क्यूबा के लोगों में खास तौर से उत्साह है और कई अमरीकी निवेशक भी वहाँ संभावनाएं तलाश रहे हैं। लेकिन फिलहाल अमरीकी नागरिकों और निवेशकों के क्यूबा जाने पर पाबंदी बनी हुई है। क्यूबा पर अब भी कई अमरीकी प्रतिबंध लगे हुए हैं और उन्हें हटाने के लिए अमरीकी संसद की मंजूरी चाहिए होगी।
अमरीका में 54 साल बाद क्यूबा का दूतावास खुला। रिपोर्ट सुना रहे थे प्रभात पांडे। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत और मैं हूं आपके साथ निखिल रंजन। भारत में आज से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। ये सत्र अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा। इस दौरान सरकार कई बिलों को पास करवाने की फिराक में है। उधर विपक्षी दल सरकार को घेरने की तैयारी में है। व्यापम घोटाले और ललित गेट जैसे मुद्दों के साथ ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का मसला भी सरकार के माथे पर परेशानी की लकीरें खींच रहा है। हालांकि आत्मविश्वास के साथ बीजेपी ने ये कह दिया है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे के इस्तीफे की कांग्रेस की मांग वो स्वीकार नहीं करेगी। उधर कांग्रेस पार्टी इन नेताओं के इस्तीफे की मांग बार बार दोहरा रही है। ऐसे में संसद के सत्र की शुरुआत कैसी रहेगी, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी संदीप कुमार सोनी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर से।
पहले दिन तो लोकसभा में आज हाउस नहीं चलने का संभावना है, क्योंकि एक सदस्य जो जबुआ के जो मेंबर हैं उनकी डेथ हुई है, सो उनकी श्रद्धांजलि देते लोकसभा के स्थगित होने संभावना है। और राज्यसभा खास करके तो हम देख रहे हैं कि फिर वही बात सब शुरू हो जाएगी, व्यापम से लेकर ललित मोदी के इश्यू लेकर। सबसे मेन ओपोजिशन पार्टी जो कांग्रेस है, उन्होंने डिमांड पेश किए जो ऑल पार्टी मीटिंग में, जो स्पीकर ने भी बुलाए थे और जिसका वेंकैया नायडू के अध्यक्ष में भी एक मीटिंग हुई थी। दोनों मीटिंग में कांग्रेस का ये कहना है कि जब तक विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और दो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान को इस्तीफा नहीं देंगे, जब तक हाउस चलाने नहीं देंगे। जब सरकार की तरफ से कहा गया कि भाई हम सब डिबेट के लिए तैयार हैं, सब बातें सुनने के लिए तैयार हैं, तो ये तो मेन मुद्दा हो गया एक ललित गेट। उसके साथ साथ जैसे शिवराज सिंह चौहान की बात, तो फिर वो व्यापम स्कैम है, तो मुद्दे का कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि सरकार ने कह दिया कि कोई दोषी नहीं है, इसलिए कोई इस्तीफा नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट होने से पहले ही जो बैटल लाइंस जो कहा जा रहा है वो बड़ा स्पष्ट है। सरकार एक तरफ कही है कोई रेजिग्नेशन नहीं है, सब इश्यूज डिस्कस करने तैयार है। एक हमें यहाँ डिस्टिंक्शन करनी है कि कांग्रेस कह रही है कि जब तक रेजिग्नेशन नहीं होगा हाउस नहीं चलेगी।
जी, मैं इस सवाल पर आ रहा था। कांग्रेस का मतलब विपक्ष नहीं है पूरा, क्या संसद को चलने देने या ना चलने देने के मुद्दे पर कांग्रेस और बाकी जो विपक्षी दल हैं उनमें एकजुटता है, एकजुटता रहेगी, या कांग्रेस एक तरफ हो सकती है और बाकी विपक्षी दल अलग हो सकते हैं, कुछ इस तरह की संभावना नजर आती है आपको?
उसका संभावना ज्यादा है, क्योंकि जो कांग्रेस का जो स्टैंड है कि हाउस चलने नहीं देंगे जब तक रिजिग्नेशन नहीं होगा, उस पर मुझे लगता है कि बाकी पार्टी साथ नहीं देना चाहते हैं। वो लेफ्ट वामपंथी हो या बाकी जो पार्टीज हो, वो साथ नहीं देना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि आप अगर रेजिग्नेशन को इश्यू मान के चलेंगे तो हाउस ही आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का स्पष्ट है। और मुख्यमंत्रियों का इस्तीफा यहाँ मांगना, मतलब आपके संसद में मांगना, वो कितना सही स्ट्रेटजी रहेगा ये बाकी पार्टीज मानने को तैयार नहीं है। बाकी पार्टीज का कहना है कि भाई बहस होनी चाहिए। अगर कांग्रेस कम से कम लोकसभा में तो इतने संख्या नहीं है, लेकिन राज्यसभा में उनका काफी संख्या है, तो हो सकता है लोकसभा में एक चलते रहे और राज्यसभा ना चले। और बाकी पार्टीज का सपोर्ट इतना ही है कि हमें डिस्कशन होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, लेकिन हम कोई डिमांड रखे कि हाउस चलने नहीं देंगे, वो उस पक्ष पे नहीं है। लेकिन सरकार के सामने, खास करके बीजेपी के सामने जो चुनौती है वो बिहार चुनाव है, जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि पार्टी के नेतृत्व नहीं चाह रही है कि लैंड बिल कोई बड़ा मुद्दा बन जाए बिहार चुनाव से पहले, तो हो सकता है सरकार ही ज्यादा इस पर जोर ना डाल के जो दूसरी बिल इम्पोर्टेंट बिल है, जो है गुड्स एंड सर्विसेज बिल, जीएसटी बिल जो कहा जा रहा है, उस पर ज्यादा उनका फोकस है। जिस तरह की रवैया हम देख रहे हैं कि सरकार इस अधिवेशन में कम से कम लैंड बिल जरा जोर नहीं दे रही है।
वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर बता रहे थे कि संसद का मानसून सत्र कैसा हो सकता है, और इसके साथ ही जान लेते हैं कि आज किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
आज जिन खबरों पर नज़र होगी उसमें से संसद का मॉनसून सत्र है, और इसके अलावा लेफ्ट पार्टियों ने बिहार बंद का आह्वान किया है आज, और साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट में मैगी बैन पर सुनवाई होने जा रही है। सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने पत्रकारों को संकेत दिया था कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ललित मोदी की कथित मदद के आरोप पर संसद में अपना बयान दे सकती हैं। इसके अलावा भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI मैगी नूडल्स पर बैन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगा। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर पूछा था कि क्या FSSAI को मैगी पर देशव्यापी बैन लगाने का अधिकार है या नहीं। साथ ही वाम दलों ने केंद्र सरकार के विरोध में बिहार बंद बुलाया, इस पर भी हमारी नज़र होगी। लेफ्ट का आरोप है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में देश में भ्रष्टाचार और महंगाई बढ़ी है। आज ही ओहियो के गवर्नर जॉन कैसिक अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी उम्मीदवारी का ऐलान करेंगे। अगले साल नवंबर में होने वाले इन चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी की ओर से एक दर्जन से भी ज़्यादा उम्मीदवार अपना दावा पेश कर चुके हैं। इनमें भारतीय मूल के बॉबी जिंदल भी शामिल हैं जो लुइजियाना के गवर्नर है। तो ये सब खबरों पर हमारी आज नज़र होने वाली है।
चुनावी राजनीति में भारत के वामपंथी दल अभी अपने सबसे बुरे दौर में है। बिहार में तो इनकी स्थिति कुछ दूसरे राज्यों के मुकाबले और भी बदतर है। ऐसे में चुनावी साल में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने के लिए बिहार के 6 प्रमुख वामपंथी दल एकजुट हुए हैं। ये दल मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। आज इन दलों की ओर से केंद्र और बिहार सरकार की नीतियों के खिलाफ बिहार बंद भी बुलाया गया है। बिहार में वाम दलों की स्थिति कभी मजबूत हुआ करती थी, मौजूदा हाल में उनके लिए संभावनाओं पर पटना से मनीष शांडिली ने ये रिपोर्ट भेजी है।
90 के दशक के अंत तक बिहार में वामपंथी दलों की दमदार मौजूदगी सड़क से लेकर सदन तक में दिखाई देती थी। उस दौर में बिहार विधानसभा में वामपंथी दलों के 30 से अधिक विधायक हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान विधानसभा में केवल एक वामपंथी विधायक सदन में है। ये दल अभी सूबे में जनता के सवालों पर कोई बड़ा आंदोलन या लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी CPIML बिहार की बड़ी वामपंथी पार्टी है। पार्टी के राज्य सचिव कुणाल राज्य में वामपंथ की कमजोर स्थिति के कारणों के बारे में कहते हैं,
बिहार में वैसे हम लोगों की एक संघर्षशील उपस्थिति है, लेकिन संसदीय हिसाब से देखें तो निश्चित रूप से हम लोग काफ़ी कमजोर स्थिति में हैं। विगत कुछ दशक से जो ग्रामीण समाज में बहुत सारे बदलाव आए, पुराने तरह की सामंती जकड़न या जो सामंती व्यवस्था थी जिस तरह से, उसमें एक नीचे हम लोगों ने देखा कि बदलाव आया है, और हम समझते हैं कि जो बदलाव हुए हैं ग्रामीण समाज में उसके हिसाब से लड़ाई को आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं कोई कमी रह गई।
छठी बिहार विधानसभा में 35 विधायकों के साथ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई सदन में प्रमुख विपक्षी पार्टी बनी थी। पार्टी की बिहार राज्य परिषद के सचिव सत्यनारायण सिंह बताते हैं,
बिहार के अंदर लेफ्ट एक यूनिटी होनी चाहिए, उसकी कमी रही पहली बात, और सबसे बड़ी बात है कि हम लेफ्ट पार्टी संघर्ष से पीछे हटे, जनता के सवालों और समस्याओं को लेकर, खास करके निचले तबके के सवालों को लेकर, जो सरजमीन का मुद्दा है उसको लेकर के जो हमको आंदोलन करना चाहिए उसमें तो हम नहीं।
ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या वर्तमान हालात में वामपंथी दल अपनी खोई राजनीतिक जमीन हासिल कर पाएंगे, और अगर हाँ तो कैसे। सर्वोदय शर्मा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी सीपीएम के राज्य सचिव मंडल सदस्य हैं। उनके मुताबिक सांप्रदायिकता और नव उदारवाद के खिलाफ लड़ाई को जोड़ने से बिहार में वामपंथ को फिर से जनता का व्यापक समर्थन मिलेगा।
सांप्रदायिकता विरोध की लड़ाई और नव उदारवाद की लड़ाई को एक साथ जोड़कर हम चलाए और एक नया वैकल्पिक आर्थिक नीति भी देश के सामने या राज्य के सामने रखे, जिसके इर्द गिर्द हम जनता को गोलबंद कर सके।
वैश्वीकरण और उदारीकरण के दौर में बिहार में भी गरीबों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसा मानना है एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के निदेशक डीएम दिवाकर का। हालांकि वो यह भी कहते हैं कि यह चुनौतीपूर्ण स्थिति वामपंथ को बिहार में फिर से अपनी जमीन वापस पाने का मौका भी देती है।
बिहार में खास करके जाति वर्ग सम्मिलित है, तो अभी तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है उस आंकड़े का अध्ययन करें और उस आंकड़ों के आधार पर अपनी रणनीति तय करें, और अपनी भूमिका तो अभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों के साथ अपने एजेंडा को लेकर चलें। इसलिए जरूरी है वो एक लार्जर यूनिटी की बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन अपना एजेंडा जो है गरीब का, वो गरीब का एजेंडा लेकर ही आगे चलें, तो इनकी स्थिति बेहतर होगी।
वामपंथी दल अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन इस संकट ने बिहार में सक्रिय 6 प्रमुख वामपंथी दलों को एकजुट भी किया है। इनमें सीपीआई, सीपीएम और सीपीआईएमएल शामिल हैं। हाल में ही बिहार विधान परिषद के चुनाव हुए थे, यह चुनाव इन दलों ने मिलकर लड़ा। साथ ही इन्होंने घोषणा भी कर रखी है कि ये बतौर तीसरी ताकत विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेंगे। वाम दलों के कार्यकर्ता बड़ा अभियान चलाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में आज बिहार बंद का भी आयोजन किया गया है। मनीष शांडिल्य, पटना।
झारखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण 12 लोगों की मौत हो गई है। बारिश के कारण कई इलाकों का संपर्क टूट गया है, क्योंकि कई पुल गिर गए हैं और कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया है कि उसके पार जाना मुश्किल है। बारिश पिछले 72 घंटे से जारी है और फिलहाल इसके रुकने के आसार नजर नहीं आ रहे। इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने रांची में स्थानीय पत्रकार नीरज सिन्हा से बात की।
जी, कुछ इलाके में जोरदार बारिश हुई है और मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उससे अब तक जो बारिश होनी चाहिए उससे 16% बारिश अधिक हुई है। झारखंड के पलामू इलाके में, जो अमूमन सूखा इलाका माना जाता है, पलामू प्रमंडल में पिछले 72 घंटे के दरमियान भारी बारिश से आधा दर्जन पुलिया और डायवर्सन टूट गए हैं। इससे कई इलाकों का संपर्क भी टूटा है, कई नदियां वहां उफान पर हैं। पलामू गढ़वा इलाके में बारिश से, बिजली गिरने से, कच्चे मकान ढहने से, नदियों और तालाबों में डूबने से कम 8 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा लोहरदगा, गुमला और रांची में अलग अलग इलाकों से मिली खबरों के मुताबिक कम से कम आधा दर्जन लोगों की मौत हुई है और आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि भी हुई है। पलामू से गढ़वा शाहपुर स्टेट पर एक पुलिया धस गई है। शनिवार की रात एक भारी मालवाहक ट्रक की इस पुलिया से गुजरने के वक्त यह हादसा हुआ। इससे गढ़वा और पलामू का संपर्क टूट गया है। पलामू के उपायुक्त के श्रीनिवासन से हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि पलामू से औरंगाबाद बिहार जाने के रास्ते में भी 3 डायवर्सन बारिश की वजह से टूटे हैं। हालांकि डायवर्सन के मरम्मत के काम तेज किए गए हैं और फिर भी बड़ी गाड़ियों के आने जाने में अब भी दिक्कत बनी हुई है।
जो प्रशासन है, अब तक उसने बचाव और राहत के लिए क्या किया है? क्या लोगों को अपने घर भी छोड़ने की नौबत आई है?
जी, पलामू के उपायुक्त से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि भारी बारिश से निचले इलाके में, जो नदी और डैम के इलाके में है, उन इलाकों में प्रशासन ने पुलिस के और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया है। और रोड सेक्शन के इंजीनियरों को उन्होंने कहा है कि जो डायवर्सन और पुलिया टूटे हैं उसके विकल्प के तौर पर तुरंत कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए और उस पर काम भी शुरू हो गया है। हालांकि 72 घंटे के दरमियान अब भी पलामू से औरंगाबाद बिहार और पलामू से रांची, पलामू से गढ़वा जाने वाले रास्ते में स्मूथली यातायात का आवागमन अभी शुरू नहीं हो सका है। पलामू के उपायुक्त का कहना है कि बारिश की वजह से कार्यों में थोड़ी दिक्कत भी आ रही है और थोड़ा वक्त लग सकता है। इस बीच मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि अगले 48 घंटे में राज्य के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
अभी इस वक्त क्या हालात है?
देखिए, कल दिन में थोड़ी बारिश थमी थी लेकिन फिर रात से बारिश शुरू ही है। हालांकि बारिश की रफ्तार बहुत ज्यादा नहीं है, रिमझिम बारिश इसे कह सकते हैं, लेकिन मौसम विभाग ने जो आशंका व्यक्त की है कि आज सुबह से अगले 48 घंटे तक राज्य के अधिकतर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है।
रांची से स्थानीय पत्रकार नीरज सिन्हा बता रहे थे वहां बारिश का ताजा हाल। और अब अखबारों की समीक्षा कर लेते हैं प्रभात पांडे के साथ। प्रभात जी, अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए क्या है आज के अखबारों में?
जी निखिल, आज के अखबारों में संसद का जो मॉनसून सत्र आज से शुरू होने वाला है उसके हंगामेदार होने की संभावनाएं व्यक्त की गई हैं। जनसत्ता में हेडलाइन है कि किसी का इस्तीफा नहीं होने देगी सरकार, कांग्रेस भी अपने रुख पर अड़ी। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने मॉनसून सत्र को लेकर हेडलाइन दी है, गवर्नमेंट सेंसेस एंड ओपिनियन एन ओपनिंग टॉप पार्टली सेल्वेज सेशन। इसका मतलब कि जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उसने ऐसा आकलन कर लिया है कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं उनको लेकर कांग्रेस पार्टी की दूसरे विपक्षी दलों से आम सहमति नहीं है और इसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने की सोचेगी। इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है, अनफेज्ड मोदी वॉक्स इनटू द स्टॉर्म, यानी कि मोदी को जो विपक्ष का जो हमलावर रवैया है उससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसी हेडलाइन दी हुई है। और नरेंद्र मोदी जो है वो अपने जो मंत्री हैं और अपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका पूरी तरह से समर्थन करेंगे संसद में। साथ ही दिल्ली में पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो तनातनी है वो भी अखबारों की सुर्खियां छाई हुई है। टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये खबर है, जनसत्ता में भी यही खबर छपी है कि बस्सी ने पुलिस महकमे में तबादलों और पोस्टिंग की जानकारी मुख्यमंत्री को देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा जो डीडी का किसान चैनल है उसके लिए अमिताभ बच्चन के 6 करोड़ रुपए से ज़्यादा लेने की जो खबरें आई थी, अमिताभ बच्चन ने उसका पुरजोर खंडन किया, ये खबर भी छपी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बजरंगी भाईजान जो सलमान खान की फिल्म है वो टैक्स फ्री हो सकती है, इस बात की खबर छपी है दैनिक भास्कर में।
अभी हुई नहीं है
लेकिन अखिलेश सिंह यादव उनको फिल्म काफ़ी पसंद आई, ऐसी खबर छपी है और वो इसे टैक्स फ्री कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया प्रभात अखबारों की समीक्षा के लिए।
सदियों से गूंजती आवाजें,
ओम नमो भगवते ऋग्वेदाय नमः।
ऐसे लोग जिन्होंने गढ़ा हमारा मन, जो आज भी धड़कते हैं हमारी संवेदना में,
कहें कबीर सुनो भाई साधो,
जिनके बिना भारत ऐसा भारत ना होता।
मैं तो हूं विश्वास में,
प्रोफेसर सुनील खिलनानी के साथ उस अतीत की यात्रा जो बीता नहीं बल्कि हम में जीता है। भारतीयता के अमर शिल्पियों पर बीबीसी की स्पेशल सीरीज फैला उजियारा, पहला प्रसारण रविवार को दिनभर में और पुनः प्रसारण मंगलवार विश्व भारती में।
दशहरी, चौसा, लंगड़ा, हापुस, अल्फांसो, इन नामों से आप वाकिफ होंगे और आपने ये आम खाए भी होंगे। हर आम का अपना स्वाद और अपनी रंगत है, लेकिन अगर खुशबू और स्वाद आम के खास होने के पैमाने हैं तो इसमें रटौल आम की एक खास जगह है। कहाँ पैदा हुई आम की ये बेहतरीन किस्म, ये जानने के लिए अमर शर्मा ने इस आम के बाग तक का सफर तय किया। आइए सुने उनका अनुभव।
दिल्ली के यमुना नदी पर वजीराबाद पुल को पार कर लोनी के रास्ते सिर्फ 25 किलोमीटर की दूरी पर है जिला बागपत खेकड़ा तहसील का रटौल गांव, और यहीं पैदा हुई दुनिया भर में मशहूर आम की एक खास किस्म रटौल। आम के बाग पहुंचकर महसूस हुआ कि कि चारों तरफ फैली हरियाली, झिंगुर की आवाजें आपके अंदर कुछ जिंदा कर देती हैं। कुछ दूर चलने पर बाग में खेल रहे बच्चे मिल गए।
हम खेलते हैं पेड़ पे।
आगे बढ़ने पर हमें मिले कुछ किसान जो आम के बाग में काम करते हैं।
बहुत सारे आम है, खासुल खास है, रटोल है, अर्जी, गुलाब जामुन है, अनफस है, चौंसा है, बहुत सारी वैरायटी ऐसी हैं जो लोग जानते भी नहीं। बहुत
खासियत है उसकी, आम भी टपक के जब पेड़ से गिरती है और उसको आज अंदर मकान में रख दीजिए, किवाड़ बंद हो गए। 12 घंटे के बाद जब आप किवाड़ खोलेंगे तो समझेंगे कि अंदर कितना माल रखा हुआ है, एक ही आमी की महक से।
जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर और रटौल में आम के बाग के मालिक शाहब सिद्दकी रटौल आम की खूबी को बारीकी से बयां करते हैं।
मोटी खाल के जो लोग होते हैं वो आजकल ज़्यादा कामयाब हैं, जो पतली चमड़ी के या नरम मिजाज के लोग हैं वो नहीं चल पाते। इसी तरह से इस आम का भी हाल है कि बहुत नरम मिजाज का है तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाता, इसलिए ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाता और जल्दी ख़राब हो जाता।
रटौल आम एक तुख्मी आम है, यानी जो गुठली से पैदा होता है। रटौल गांव के बाशिंदे और दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के भूतपूर्व प्रोफेसर जहूर सिद्दकी बताते हैं।
सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है दो आदमियों का रहा, एक तो हकीमुद्दीन साहब और उनके भाई आफ्ताब जो यहाँ लोकली बेस थे, दो बागों में, नूरबाग में और भोपाल वाला बाग जो मशहूर है उसमें मुख्तलिफ जो है किस्में जमा हो गई। मगर नर्सरी के तौर पे जो है बड़े पैमाने पे शेख मोहम्मद आफाक ने जो है 400 से ज़्यादा किस्में जो हैं अपनी नर्सरी में जो हैं वो कायम की।
ये वही दौर था जब मुल्तान के व्यापारियों ने समझ लिया था कि रटौल आम एक बेहतरीन किस्म है और उन्होंने इसकी कलमें मंगवानी शुरू कर दी।
पार्टीशन के बाद क्योंकि जिनके खेत के अंदर या प्लॉट के अंदर जो है ये हुआ था वो बड़े लड़के उनके वहाँ पाकिस्तान में चले गए और उनका क्योंकि खुद नाम जो था अनवारुल्लाह था उनके फादर का, तो बेटे ने थोड़ा बहुत उनको परिचित किया लोगों को कि ये भाई हमारे यहाँ ये बाग से ये आम आया है और हमारे फादर का जो नाम जो था अनवारुल्लाह था तो वो अनवर रटौल के नाम से पाकिस्तान में मशहूर हो गया।
भारत से पाकिस्तान पहुँचे रटौल आम के साथ एक बेहद दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है।
ज़ियाउल्लाह कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही सियाने थे तो उन्होंने सोचा कि ये इंदिरा गांधी कुछ ज़्यादा आमों वामों के बारे में नहीं जानती होंगी और हमारे यहाँ ये अनवर रटौल जो है ये सऊदी अरब में भी जाता है, वहाँ के बादशाह साहब शाह फैसल के हजूर में भी पेश किया जाता है, वहाँ के शेख भी खाते हैं और दूसरे जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ भी जाने लगा है, लंदन भी जाने लगा है, तो इंदिरा गांधी को जो है ये आम जो है हम भेज देते हैं। अब वो पेपर में आया कि ये इस तरह से ज़ियाउल्लाह साहब ने जो है वो भेजा है। अब जब वो आया तो रटौल के भी कुछ लोग थे वो फिर उनके पास पहुँचे इंदिरा गांधी के पास और उन्होंने कहा कि ये तो देखिए इतने करीब आपके जगह पे आप रहती हैं वहाँ से 55 किलोमीटर पे जो है ये रटौल गांव है और ये तो वहीं का है, तो वो जाहिर है वो भी खुश हुई।
रटौल गांव पहुँचने वालों की फहरिस्त में कई पूर्व प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के नाम शुमार हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि मौजूदा दौर में बाग के आसपास ईंट के कई भट्टे बन गए हैं जिससे बागों के अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है। रटौल आम आप तक पहुंच जाए तो हो सकता है कि आप इसकी खुशबू को अपने एहसास का हिस्सा बना लें, लेकिन अगर आप बाग में इसके असली जायके को महसूस करना चाहते हैं तो एक बार रटौल गांव जाइए।
और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार प्रभात पांडे से। अमरीकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने अमरीका और क्यूबा के बीच कूटनीतिक संबंध बहाल होने को एक ऐतिहासिक लम्हा बताया, लेकिन कहा कि दोनों देशों के बीच अब भी कई मतभेद हैं। ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते को लेकर अमरीका और इसराइल खुलकर आमने सामने आ गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जहाँ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के इस समझौते को मंजूरी देने को एक बेहतरीन कदम उठाया, वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने इस कदम की आलोचना की। मध्य प्रदेश और झारखंड में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश की वजह से 22 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोगों के बाढ़ में फंसे होने की आशंका है। ब्राज़ील में शुक्रवार रात से सोमवार के बीच मनाउस शहर में 35 लोगों की हत्या के मामले सामने आए हैं। अधिकारियों का कहना है कि मारे गए ज़्यादातर लोगों की पहचान नशीली दवाओं के कारोबारियों के रूप में हुई है। सीरियाई सीमा के पास तुर्की के सुरुच शहर में हुए धमाके में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं। विश्व फुटबॉल नियामक संस्था फीफा के अध्यक्ष सेप ब्लाटर ने संस्था की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई नए कदम उठाने की घोषणा की। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुना रहे थे प्रभात पांडे। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे अगली मुलाकात होगी 8 बजे विश्व भारती में।